ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अब 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कि हे अर्जुन, शरीर रूप में यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। 62 में फिर कहा कि हे भारत, सब प्रकार से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां कहा ना कि मेरे वाली भक्ति में उस सनातन परम धाम को प्राप्त कराने में मैं सहयोगी हूं। 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने में मैं प्रतिष्ठा मैं ही हूं, क्योंकि जैसे हमने अब बीए को प्राप्त करना, बीए में एडमिशन लेना है तो मैट्रिक का सिलेबस सहयोग करता है, मैट्रिक की जो सन्निध हमारी सर्टिफिकेट है वो सहयोग देता है। ये 14वां अध्याय देखिए गीता जी, अध्याय नंबर 14 और ये 27वां श्लोक है। इसमें कहा कि क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का, रस आनंद का आश्रय प्रतिष्ठा आश्रय मैं हूं। अब देखो, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का, उस अविनाशी परब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा का, और ये ब्रह्म ने लिखा है, अवश्य ब्रह्म ने माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा का, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए, ये देखो 23वां 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है गीताजी में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसा वह तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो यहां हम ये क्या लिखा है कि ब्रह्मणे, ये 14वें का 27वें कहा है कि ब्रह्मणे ही प्रतिष्ठा अहम। इसमें कहा क्योंकि अविनाशी परब्रह्म यानी यहां सचिदानंद घन ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं, कि उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए उस वहां जो तू अखंड अविनाशी भगवान के पास परम पद को प्राप्त करना चाहता है उसका भी उसकी भी प्रतिष्ठा यानी पहली पैड़ी मैं ही हूं, उसका आश्रय मैं ही हूं, यानी मेरे मैं जो बता रहा हूं यही ज्ञान से आगे जाएगा। तो आगे कहा है 64 में 62 आपने सुना, 63 में कहा कि ये गीता जी का जो अनमोल ज्ञान है गुप्त रहस्य तुझे बता दिया, अब तेरी इच्छा है वैसा कर। 18वें अध्याय के 64 में कहा कि एक और गुप्त बताता हूं, वही पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है वो मेरा भी पूज्य देव है, वो मेरा इष्ट है, क्योंकि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि मैं भी उसी की शरण हूं। अब 65 में कहा कि देख ले तूने जो करना है, मेरी शरण में रहना है तो मेरा भजन कर, मुझ में मन वाला हो तो मुझे प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया कि तू उस परमात्मा के पास जाना है तो सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, मेरे लेवल की जो मेरी भक्ति ओम नाम के जाप की है मुझे दे दे, मेरे में छोड़ दे ताकि मैं तुझे ऋण मुक्त कर सकूं या कर्मों के बंधन से जो मेरे तेरा ऊपर भार है वो खत्म कर सकूं, तो तुम एकम शरणम व्रज उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामी मा सुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। और इन अनुवादकर्ताओं ने इसका उल्टा अर्थ कर दिया कि तू सब धर्मों के कर्मों को मुझ में त्याग कर मेरी ही मुझ एक की शरण में आ जा, फिर मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे यू पापा तो मुक्त कराती हूं, तो कहने लग रहा तेरी मेरी मृत्यु होगी, मैं सब न खाऊंगा, जन्म मृत्यु मिटे नहीं, तू उस परमात्मा की शरण में जा। तो वो सारी ही थ्योरी बदल दी इन लोगों ने गीताजी के अनुवाद को गलत करके, गीताजी सही है। तो इन भ्रमणाओं को मिटाने के लिए परमात्मा कबीर परमात्मा जी आए थे, और जो ज्ञान आज को पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, कुरान में और बाइबल में, पवित्र बाइबल में जो आपके समक्ष दिखाया जा रहा है, ये परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व आकर के अपने सवसम वेद में अपनी कबीर वाणी द्वारा काव्यना है कविताओं के माध्यम से लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन कर रखा है, जो आज अपने सदग्रंथ जो सच्चे साहित्य हैं, ये भी हमारा ये साहित्य हमारी मदद कर रहा है, परमात्मा के उस ज्ञान को सेकंड कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो जब वो परमात्मा आते हैं हमें क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला ये लगे दाग पै दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला
लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों, जड़े बिराणी आग रे, जड़े बिराणी आग रे, और बात तेरे सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बजका चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नागरे, को बजका चढ़ी चढ़री चित पे, होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे, बिना प्रेम बैरागरे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे, हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे, बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरे केसो व गफलत में बंदे, जाग जाग नर जागरे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट्य पूर्ण बाग रे, प्रगट्य पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, केसो गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, केसो गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब पुणात्मा, परमात्मा की वाणी, परमात्मा के विषय में जो संतों ने, जिन्होंने परमात्मा प्राप्त करने की चेष्टा की है, जिनमें ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, वो आत्मा तड़प उठती है प्रभु के लिए। जब तक वो संसारिक धंधों में लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत कसक फिर भी उसके अंदर रहती है, और जिस समय उसको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है, परमात्मा की चर्चा सुनाता है कोई अधिकारी, तो उसमें एक विशेष तरह जाग जाती है, किसमें, जिसमें पूर्व जन्म में कभी भक्ति की हुई है और पूर्व संस्कार की भक्ति विद्यमान है, शेष रहती है। जैसा कि कल आपको बताया था कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं, एक तो वो पुण्यात्मा होते हैं जो पूर्व जन्म से अपनी भक्ति करते हुए आ रहे हैं, और उन पुण्य संस्कारों के वश उनको 2-4-10 मनुष्य जन्म कंटिन्यूस मिल चुके हैं, और वो सत्संग सुनते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनते हैं, वो तुरंत ही सर्व विकारों को त्याग कर, चाहे वो कितने ही वर्तमान में कितने ही दुष्ट प्रसिद्ध हो चुके हों, जैसे कोई वैश्या का कर्म करते थे, कोई शराब पीते थे, कोई ओसे और भी गंदे कर्म करते थे, जब उन पुण्यात्माओं को यह मार्ग मिला, एकदम तड़फ गए और सब विकार त्याग दिए, डाकुओं ने भी अपनी क्रियाएं को चेंज करके और बड़े बड़े दोनों भक्त कहाए। दूसरे वो होते हैं जो टर्न वाइज जो मनुष्य शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों के सब प्राणियों के शरीरों को भोग भाग के, एक तो स्वाभाविक एक जीवन तो मिलता है सब प्राणियों, तो वो देर से मानते हैं, वो विकार भी नहीं त्यागते हैं शीघ्र सी, लेकिन उनको थोड़ा समय ज्यादा चाहिएगा इस सत्संग रूपी जल में गोते लगाने का, निर्मलता आ जाएगी, क्योंकि साबुन वही है, पानी वही, जल वही है, डिटर्जेंट साबुन है परमात्मा का, ये सतनाम ये सारे मैल धो के धर देगा। पर ज्यादा मैला कपड़ा उसमें 2-3 बार लगाना पड़ेगा, और थोड़ा मैला है तो 1 बार में ही उज्जवल हो जाता है। तो ये जैसे नित्यानंद जी महाराज कौन थे, ये ब्राह्मण घर में जन्म था इनका, जिनका ये जो दास शब्द सुनाता है, ये वैसे ये शब्द, ये जो काव्य है, ये कबीर परमात्मा का है, उनके शब्दावली में लिखा हुआ है। तो इस महापुरुष ने उसके नीचे अपना एक नाम जोड़ रखा, फिर भी हमने तो आपको इस सत संदेश को आप तक पहुंचाना है, वो किसी भी माध्यम से आपके पास जाना है। सरंज किससे की हो, दवाई परमात्मा कबीर जी वाड़ी है, औषधि वही है, ये आपके कानों के माध्यम से पहुंचानी है। और साथ में निर्णायक ज्ञान भी देना है कि जिनको सतमार्ग नहीं मिला, उन्होंने अपना प्रयत्न भी किया, घर भी छोड़ दिए, साधनाएं भी कठिन की, और वो जन साधारण में प्रसिद्ध भी हो गए, और फिर भी जैसे थे जो के तो एज इट इज नथिंग, उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। कुछ भी का मतलब है कि स्वर्ग में चला गया, देवता बन गया, अपने पुण्यों को खत्म करके फिर 84 लाख योनियों में गधा बन गया, बता क्या प्राप्त हुआ। कहते हैं ये वेदों को कंठस्थ याद कर लेते हैं, कठिन साधना करते हैं, कहते हैं ये गह गाटा ठोर, ये अरहट का कुआ लोई यागल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान का हावे अरहट डोर बंधे सब आवे। अरहट डोर का अर्थ है स्वर्ग गया, यहां पुण्य किए स्वर्ग गया, पुण्य के आधार से फिर पाप भी यहां साथ पैरेलल होते हैं, उन पापों का अकाउंट अलग होता है, उसके लिए उसको भोगने के लिए नरक गया, उसके बाद 84 लाख योनियों में फिर आ गया, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पुण्य पाप जैसे बने, फिर गया फिर आया, फिर गया फिर आया। तो इससे ये नथिंग है, कुछ नहीं है। जैसे कि आपने महावीर जैन जी का इतिहास पढ़ा, उसमें 80 लाख बार तो वो देवता बने, और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, रक्त रंग जो भाई, और गिनती नहीं। तो क्या हुआ, नथिंग, वहीं का वहीं फिर जैसे थे। तो उसके लिए ये पुण्यात्मा ब्राह्मण जन्म, घर में जन्म था नित्यानंद जी, और बचपन का नाम नंदलाल था। इनका बीरबल खानदान से संबंध बताते हैं, इसके माता पिता बचपन से मर गए थे, ये नाना नानी के पास पले पोसे थे। इनके नाना जी नारनौल के नवाब के यहां कोई उच्च पद पर विराजमान थे, उन्होंने इनको 5-7 क्लास पढ़वा कर और वहां तहसीलदार लगवा रखा था, नौकरी लगी हुई थी इसकी। एक दिन इस नंदलाल जी ने सत्संग सुना, तहसीलदार जी ने, किसी भगत के घर में हो रहा था रात्रि के समय, ये बैठ गया छत पर, जाकर के। अब इसने वो रात्रि के समय सत्संग हो रहा था, एक महापुरुष था गुमान्नी दास, और वो चरणदास परंपरा, वैष्णो परंपरा का साधु था, वैष्णो। चरणदास जी की परंपरा दिल्ली के अंदर है, और चरणदास जी को सुखदेव ऋषि आकर मिले थे, वहां सतलोक से आकर, स्वर्ग लोक से आकर के चरणदास जी एक भगत था, उसने उसको आकर के सुखदेव जी मिले थे, और उनको फिर ये अपना ज्ञान दिया और जैसा भी उपदेश दिया। तो सुखदेव ऋषि जी स्वर्ग में है, और उसने आकर के उस चरणदास जी को अपना शिष्य बनाया, उसके आधार से फिर वो वैष्णो परंपरा चरणदास जी की चली। उसी परंपरा से ये गुमान्नी दास जी वैष्णो संत थे। अब सत्संग के अंदर ज्ञान तो ये सभी परमात्मा पताने का पाने का वही बताते हैं कि भगवान के बिना, भक्ति के बिना क्या हानि है, भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ है, ये तो सभी बताते हैं। लेकिन वो परमात्मा कौन है जिसे पूर्ण मोक्ष होता है, उसके पाने की विधि क्या है, ये उनके पास नहीं है। फिर भी जिस आत्मा ने जैसा भी ज्ञान सुना उसके अंदर तड़फ पुरानी होती है, वो एकदम फड़क जाता है, एकदम दृढ़ हो जाता है परमात्मा की तरफ पाने के लिए तड़फ जाता है। इस काल में ये जाल फैला रखा है कि आत्मा या तो भक्ति करे नहीं करे तो शास्त्र विरुद्ध करे और मेरे ही जाल में फंसी रहे। तो गुमानी दास ये नंदलाल जी जो थे तहसीलदार जी पुरानी भक्ति युक्त थे, रात्रि का सत्संग सुना था, उसी में तड़फ गए और इतने तड़फ गए कि ये उपदेश तो लेना चाहिए नहीं तो जीवन व्यर्थ हो गया तेरा। कहते एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, वो तो एक जिनको परमात्मा पाने की इच्छा है सच्ची लगन है वो तो एक चोट में अर्थात एक ही बार की वार्तालाप से सुलझ जाते हैं। उसको इतना उमंग होगी कि भाई मनुष्य जीवन तो बर्बाद हो जाएगा और ये बार बार मिलता नहीं। जैसे सत्संग के अंदर स्वामी जी ने सुनाया तो वो उसने सुना, अब उसके काल ने कैसी बाधाएं डाल रखी उस पुण्यात्मा के अंदर के। एक तो ब्राह्मण आज से 250 वर्ष पहले की बात है, छुआछूत चरम सीमा पर थी, और फिर ऊपर से एक अधिकारी तहसीलदार, उस समय तहसीलदार की वैल्यू आज के डिप्टी कमिश्नर से भी ज्यादा होती थी, और फिर वहां एक जनसाधारण के पास बैठे हों जनसाधारण, वहां किसी के पास जाके नतमस्तक होना और फिर आसपास के लोग क्या कहेंगे कि वो तहसीलदार वहां गया था, इस तरह की उसके अंदर जो है मरोड़ी लगी हुई थी। पर वो आत्मा की जो भक्ति का जो दबाव था वो उसको टिकने नहीं दे रहा था। तो उसने निर्णय लिया कि सुबह जल्दी चला जाऊंगा, तब तक नगरी का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा हुआ होगा स्वामी जी के आश्रम में, जो कि नारनौल से थोड़ी सी दूरी पर उनका आश्रम था, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्वामी गोवानी दास जी का आश्रम था। तो वहां जाकर के शीघ्र नाम ले आऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इस उद्देश्य से वो सुबह उठा, घोड़े पर सवार हुआ, उसमें कारें नहीं होती थी, यही उत्तम सवारी घोड़ा होता था अधिकारियों के लिए, या ऊंट होता था जैसे आगे राजस्थान में गहरा चला जाए। तो घोड़े पर चढ़ा जा रहा था, उधर से गुमानी दास जी सामने, तो जब सत्संग कर रहे थे तो सिर पर पर्दा पुर्दा बांध रहे थे, अपना टोप टाप सा मुंडा लगा रखा था कोई कपड़ा, और उसने मुंड मुंडा रखा था, वैष्णो साधु थे, कति ताजा उस तरह फिरा रखा था सिर पे मूछ माछा पे विशार, और वो सुबह उठकर घूमने के लिए अपने आश्रम से दूर तक उसी रास्ते आ रहे थे गांव वाले साइड में। तो उधर से ये नितानंद जी जा रहे थे, ब्राह्मण तो थे, ब्राह्मण सोन को सोन गणे मान्या करते, पहला सुकुन अब सुकुनों को बड़ा ध्यान देते थे, वैसे तकरीबन सभी देते थे। तो आगे उस नंदलाल जी ने नितानंद जी ने देखा तहसीलदार जी ने कि एक आदमी मूंड मुंडाए हुए आ रहा है, और मूंड मुंडाए को अब सुकुन मानते थे, जिस काम में जावर आगे कोई कचकोला कढ़ाए पा जाता तो वो देख ले तो काम बने को नहीं, ऐसी धारणा थी। तो उसने सोचा देखियो मनुष्य की ता गया सुबह सुबह मरिया मेरे आगे कौन है, और इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया। उसके लिए एक विकल्प यही था, या तो उल्टा जावे वो वापस हो ले, और वापस वो हो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर पुरानी भक्ति का इतना दबाव था कि वो नौका नाम तो लेकर आऊंगा और भक्ते उठकाया हूं आज सूत बैठ जाएगा। तो फिर उस शकुन को खत्म करने का निष्क्रिय करने का तरीका क्या था, उसने सोचा इसका 2-3 शर्म टोले मार दूं है, मेरा शकुन खत्म हो जाएगा। तो घोड़ा रोक के उस संत के पास नोबला मन हो से मैं जा रहा था, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा था, और तू कहां मर रहा सुबह सुबह मेरे सामने है, तने मेरे शुभ काम में जो है ना अब सुकून कर दिया। तो उसके सिर में 2-3 ऐसे मारे नोटोले मार दिए। अब वो महात्मा जो गुमानी दास जी वो देख रहे थे भाई कोई अधिकारी आ रहा है, शिक्षित आदमी है, बड़ा भगवान सा दिखा है, घोड़े वाला तो आदमी अच्छा ही होगा। फिर ने सोचा ये मूर्ख ने यू के करा बता बे, मतलब मेरे शर में बालकां की तरह टोले मार दिए। पर एक शब्द कुछ कह रहा था कि आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था, तो किताब मेरे आगे मैंने अपने जिंदगी का सौदा करना था। तो साधु संतान ने तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भोजन खवा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, सब सहन होती है। वो आगे निकल गया, वो तो घूमने के दृश्य से आगे निकल गया। तो वो उधर से नंदलाल जी पहुंच गए आश्रम में। आश्रम में वृक्ष के घोड़ा बांध दिया और जाकर के भक्तों से, जो दो चार भक्त वहां थे, उनसे पूछा भी महात्मा जी कहाँ हैं, मैंने आज उपदेश लेना है। भक्त बोले आ जाओ बैठ जाओ साहब जी, कि अभी आएंगे, नहाने धोने गए हैं, स्नान आदि करके, ये उनका आसन लगा हुआ था, वहीं कुछ बोरी बारी दरी बिछा रखी थी, वहां वो बैठ गया तहसीलदार साहब। अब वो महात्मा जी घंटे आध घंटे में नहा धोकर और आकर के जब वो सामने बैठे उस आसन पर जहां नंदलाल बैठा था, अब देख लिया उस महात्मा ने भी घोड़ा बंध रहा सामने, एक आदमी वही अखरा जो तेरे सिर में इसने टोले मारे थे। और जब वो सामने आकर बैठा वो महात्मा, तो समझ गया वो भी तहसीलदार साहब भी, गयु तो बात बिगड़ गई तो महात्मा जी गेल गड़बड़ होगी। अरीब के बताइयो नाम देख ना दे, अंदर अंदर से प्रार्थना करता है परमात्मा बहुत गलती हुई मेरे से। तो तब उसने एक उदाहरण दिया, क्योंकि वो देख कर नू नीचे गर्दन कर ली नंदलाल जी ने, तहसीलदार साहब ने, अकब के कहू मैं इसते नाम दे दे। महात्मा जी भी जान गए भगत शर्मा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों, एक व्यक्ति बाजार में जाता है, कुम्हार के यहां जाता है, और एक दो अन्नों का अन्य हुआ करते, अर्थात एक रुपये का यानी दो रुपये का माल, दो रुपये का घड़ा लेने जाता है मटका, और उसको दो रुपये के घड़े को बीस रुपये बजा के देखता है उसका सौदा करने के लिए, और कहने लगे भाई अपने गुरुजी ने बजा के देख ले तो कोई डर नहीं होता, अगर गुरुजी बजा के देख भी लिया, क्योंकि जिंदगी का सौदा करना था, तो भाई इसमें चिंता ना करो। इतनी बात सुनकर वो नंदलाल जी यानी तहसीलदार साहब जी उनके चरणों में गिर गए और अक्षमा याचना की, महात्मा जी मेरे से कति भूलवश हुआ है, कल आपका मैंने सत्संग सुना और मेरे पर रात को मुझे नींद नहीं आई है, और मैंने मन बना अपनी सारी आत्मकथा सुना दी उसने, और स्वामी जी इब आपके चरणों में पड़ाइए दास, बक्सो चाहे मारो। तब सीने से लगा लिया उस महापुरुष ने और कहा ले बेटा उपदेश ले और नाम जपा कर। अब उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, मां बाप पहले नहीं थे। अब नितानंद जी कहते हैं कि और चोट लगी और वैराग्य हो गया कि संसार तो भाई नकली सांग है, कुछ सौदा नहीं। पहले तो अनाथ था, नाना नानी का पड़ा, मां बाप सिर पर नहीं, मां बाप का पंजा नहीं रहा, और अब यह पत्नी मर गई, अब मन्ने तो केवल परमात्मा ही पाना है, इस जन्म मृत्यु के झंझट से पीछा छुटवाना है। अब पुण्यात्माओं अगर को नालायक सा होता जिसमें पिछले जन्म की भक्ति ना होती तो नाम छोड़ देता, देख मेरी पत्नी मर गई किसा नाम होया, और उसका दूना दृढ़ विश्वास हो गया कि तो कुछ भी सांग को ना, आज आप पत्नी मरी कल मैं भी मरूंगा। परमात्मा कहते हैं समझे ना मूर्ख लोग, और जब अपने को भी मरना होगा करा किसका सोग, यदि हमने ना मरना हो तो फिर चिंता करा, ये तो भाई गलत मर गया, आज कल यू मरा है तो आज ये मरा है तो दो दिन पीछा अपना भी काल के मुंह में जान का नंबर है। साथी हमारे चले गए भाई हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। कागभूषण की कथा सुनी, अब कागभूषण कहता है कि शुक्र है वो मेरा सारा परिवार नष्ट हो जाने से मुझे भगवान का मार्ग मिल गया, यदि वो चोट ना लगती तो मैं भगवान के मार्ग में नहीं लगता, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता मेरा, और उससे पहले मैंने लाखों करोड़ों जन्म बर्बाद कर दिए थे। इसी तरह तो पुण्यात्माओं परमात्मा के मार्ग को बहुत गहनता से सोच करके चलना, नहीं काल पग पग पर जो है ना कुहाड़ा मारता है इस भक्ति रूपी पेड़ को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो नित्यानंद कहता है उस नित्यानंद ने इस चोट को पॉजिटिव ढंग से ले लिया और नालायक होता को भक्तिहीन होता कहता के द्रह भक्ति में मेरी पत्नी मर गई। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे लख चौरासी मां, भाई सतगुर सेवा और ये बंदगी फेर मिलन की ना। इस आधार से नितान जिनवा नौकरी भी त्याग दी और यहां एक दादरी के पास डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर एक जटेला जोड़ है, तालाब होता था उसमें चार पांच गांवों की सीमा एक एक स्थान पर मिलती थी, कुछ अक्षेत्र था ऐसा कोमन सा, उसमें जंगल था, वहां आकर साधना की। अब साधना तो उसने क्या की वो तो हम बताएंगे, लेकिन अन्य जनसाधारण से तो उसने अपनी अपने हिसाब से ठीक की। रोज स्वर्ग तक पहुंच गए, फिर 84 लाख योनियों में कंपलसरी आऊंगे। फिर भी उसी को आधार मानकर हमने देखो खेल के मैदान के नियम तो सिमिलर होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले चाहे फिर स्टेट लेवल पर खेले चाहे फिर जो ना अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, नियम वही होते हैं। तो उन्हीं नियमों को बताते हुए आपको उस पूर्ण परमात्मा इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हो आप, आपके लिए भी वही नियम लागू हैं। अब वो क्या कहते हैं नित्यानंद जी को जब ज्ञान समझ में आ गया, कहते सिर सौंपया गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब नियम वही है, परमात्मा को कहते गुरुदेव को समर्पण कर दिया, अब यो शीश सफल हो गया मेरा, अब चाहे वो किसी तरह रखे, और अब इस शीश के ऊपर परमात्मा स्वयं रक्षक हैं इसके। अब उसने किस परमात्मा को शीश समर्पण किया, कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाभ ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। जिसने जिसकी शरण ली है वो उसका रक्षक बनता है, जितनी उसकी सामर्थ्यता है, जितना उसका सामर्थ्य है। जैसे आपने तहसीलदार से मित्रता की और आपकी उसकी खास घनिष्ठ मित्रता, जब बात बनती है कोई भी किसी से कीजिए आप, तो आप जब उसके मिलने जाओगे तो वो केवल इतना काम कर सके है कि आपकी रजिस्ट्री आपके ऑफिस में बैठा करके सारे काम क्लर्कों के द्वारा 2 मिनट में करा के और आपकी रजिस्ट्री कर देगा। इसके आगे तहसीलदार का कोई ब्योत नहीं है कि आपको और कोई राहत दे, रजिस्ट्री के रोज करवाओ हम जिंदगी में एक आध बार हो पाएगी, तो इतना ही राहत वो कर सकता है। अब इसी प्रकार हम किसी अन्य बड़े अधिकारी से करें तो जितना उसका सत्र है उतना लाभ देगा, उसका क्षेत्र है क्षमता है, ऐसे ही। तो ऐसे ही हम जिस भगवान की जिस इष्ट की पूजा करते हैं उसमें जितनी सामर्थ्यता है उतना ही लाभ आपको दे देगा, लेकिन जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटे और इसके कटे बिना यो दुख नहीं मिटे, ये तो दीर्घ रोग लगा हुआ है। तो नित्यानंद जी ने जिस भी इष्ट का साधना की उसने उसके साथ रहा, जैसे वैष्णो साधक थे विष्णु जी की उपासना की उनको जितना राहत थी उनको देते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं। अब क्या बताते हैं वो, फिर हमें उससे शिक्षा लेनी है। क्या बताते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने यो दिया को भदगढ़ तोड़े। एक तो उच्च जाति का अभिमान ब्राह्मण, और फिर एक राजमा हिस्सा तहसीलदार। तो यहां कहते हैं यह कोबद का गढ़ था, यो भक्ति नहीं करने देता, मोक्ष नहीं प्राप्त होने देता, वो कोबद का गढ़ वो किला कहते उस संत ने तोड़ दिया, महापुरुष के वचनों से मुझे ज्ञान हो गया और अधीनी आ गई और परमात्मा के पाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबदगढ़ तोड़े। संतों के बिना ये कोबदगढ़ नहीं टूटता, हमने किस भगवान की भक्ति करनी है वो तो तत्वज्ञान से प्राप्त होगा, लेकिन तत्वज्ञान से हमें ज्ञान होगा परंतु मर्यादा ज्यों की त्यों है, चाहे आप किसी भी ईष्ट की साधना कीजिए, गुरुबिन नहीं हो सकती। और फिर आधीनी प्रथम हो, सच्ची लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो, और हठ योग से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। अन्य सिद्धियां आदि आ जाती हैं जो जीव की शत्रु होती हैं। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं? परमात्मा कहते हैं ये दो दूसरे साधक हैं, छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करके प्रभु बन जाते हैं। और कबीर परमात्मा के पास असंख्य सिद्धियां हैं। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो वो अविगत कला कबीर। सब पदवी के मूल है, यानी सभी उपाधि जो होती हैं, जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव या कोई देव पद है, कोई धर्मराय है, बन्ना है, यहां पर कोई भी भगवान है, कहते सबके मूल, सबके यानी जड़, उसके पास सब वाली पावर है, जैसे प्रधानमंत्री के पास सब पावर्स होती है। और सकल सिद्धि है तीर, सारी सिद्धियां असंख्य, और उनमें से मुख्य मुख्य 24 सिद्धि है जो कबीर परमात्मा की इस भक्ति, सत भक्ति, सतनाम यानी सार नाम से, और सतनाम और सार नाम से, सार नाम से सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उनका प्रयोग नहीं करना अपन, कत्ती भूल कर भी, यही हमारे लिए शत्रु बन जाएंगी। जैसे सारनाम मिलने के बाद आप किसी को थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे दोगे, कोई कहने लग जाओगे, उससे लाभ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी जेब कटती चली जाएगी। ये भूल नहीं करनी है हमने, या अपना हर तरह से इस कमाई को बचा कर रखना, नहीं तो यही फिर कई युगों का काम फिर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं परमात्मा के हमारे नाम से आपके सतभक्ति से 24 सिद्धि आवेंगी, लेकिन 24 सिद्धियों को भी आपने प्रयोग नहीं करना, इनको तो विष समझ लेना। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विषवे बीसा। हमारा जो सतनाम है, सारनाम है, इससे फिर आपको सिद्धियां आ जाएंगी, 24 सिद्धियां हैं, और ये जीव को भगवान से पक्कम पक्का दूर करेंगी। इसलिए आगाह किया जाता है कि ना किसी को बुरा कहना है, यो भी नहीं कहना भाई इतना नाश हो, इतना कीड़े पड़ियो, ये भी उसको आपका वचन फलन लग जाएगा, उसको हानि हो जाएगी, और आपको आपके पाप बढ़ जाएंगे, कमाई समाप्त हो जाएगी, कभी नहीं कहना। परमात्मा बावला नहीं है, अनजान नहीं है, उसका विधान बहुत अटल है, जो जैसा करेगा उसको फल अवश्य देगा। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो करने दो, आपको पता है कि तो कांटों में हाथ मार रहा है, बिजली को छू रहा है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कहे मेरे संत को दुख ना दीजिए कोई, और मेरा भगत संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, हरणक से पियो जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साज। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भक्त वचल भगवंत। तो परमात्मा कहते हैं मेरे संत को कोई तंग मत करना, उसके तंग करने से मैं दुखी होता हूं। और कहते हैं एरना कुछ उदारिया मैं ही मारा कंस, और जो मेरे भक्त को सतावेगा उसका खो दू वंश। तो हम क्यों चिंता करें, हम क्यों बुद्धवादे, क्या भगवान अनजान है? कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। अब कीड़ी का चीटी का भी कोई पायल बना दे, पहले तो चीटी की पायल, पायल क्या, और पायल यानी वो झंझन बन जा घुंगरू, पायल चीटी के पैर के घुंगरू बनेंगे कैसे, अर्थात नॉइसलेस, उसका शोर हो ही नहीं सकता, हम सुन नहीं सकते। और वो भी मान ले बनाकर बांध देता और उसका भी आवाज हो, चिट्टी के पैर की भी खुड़के को भगवान सुनता है। तो कहते हैं फिर हम चिंतित क्यों हों, चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। तो उसके लिए हमने किसी को दुआ बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, हम रास्ता बता सकते हैं। आप दुखी हैं, आइए हमारे सतगुरु के पास और उपदेश लीजिए, भक्ति कीजिए। उसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ कहने लग जाओगे, मैं उसने नू कर दूं, मैं उसके नाम का ये जाप कर दूं, तो आपकी कमाई नष्ट होने लग जाएगी। तो आपने एक बिजनेसमैन भी पक्का बनना है, इसमें लोभी बनना है। वैराग नाम है त्याग का 525वां, ये सब लोभ क्रोध अहंकार अंदर ही रखना है, इन्हीं में हमने वैरागी जो है ना वैरागी बनना है। कैसे? लोभ करे तो यो करे कहीं तेरी कमाई ना खर्च हो जा, बेईमाना करे तो यो करे क्यों अपनी बर्बाद करूं मैं कमाई को, इसको रास्ता बता दिया भगवान से, नाम लिया अपना आप है? भगवान इसको रात दे। तो हम ऐसे ही उड़जते रह जाते हैं, हमारे अंदर दया भाव साधु में बहुत होती है और ये दया हमारी शत्रु बन जाती है। जैसे राजा जनक जी बहुत पुण्यकर्मी राजा थे, आत्मा थी, रस्ते में जहाज में जा रहे थे अपने स्वर्गलोक को, रस्ते में एक नरक था, उस नरक के साथ से उसका विमान निकाल दिया। उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप भोग रही थी, हाहाकार मचा था। राजा जनक ने कहा कि विमान रोको, विमान रोक दिया, कहा कि ये क्या आवाज आ रही है, ये कैसी दारुण आवाज चीख आ रही है, कारण बताओ। उनके साथ जो गए थे भगवान के देवदूत, उन्होंने बताया कि राजन यहां एक नरक है और उसमें ये करनी भरनी अपनी भोग रहे, ये उन नरक में दुख पा रहे प्राणियों की चीखें हैं। राजा जनक ने कहा कि इन सबको छोड़ दो। देवदूतों ने कहा कि यहां आपका हुक्म नहीं चलता, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा। कहा धर्मराज से मेरी अर्ज लगाओ, इनको सबको छुड़वाओ। धर्मराज आ गया। धर्मराज ने यानी न्यायाधीश ने कहा कि राजन आप चलिए अपने स्वर्ग में, ये अपने करनी का भोग रहे, ये नहीं छोड़े जा सकते। तो राजा ने कहा, जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी यही रहूंगा, मैं नहीं जाता आगे। अब न्यायाधीश ने कहा, धर्मराज ने कहा कि इसका एक विकल्प है, आप अपने आधे पुण्य दे दीजिए, हम इनको छोड़ देंगे। राजा बोला तथास्तु, मैंने आधे दे दिए, मुझे नहीं देखा जाता इनका ये बुरा हाल। अब अपने आधे पुण्य दे दिए, संकल्प कर दिए, वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकालकर स्वर्ग भेज दी उसी के सामने। वो राजा जनक दयालु संत होते हैं, वो अभी विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। अब यहां निर्णायक ज्ञान शुरू होता है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको नीर खीर छानना कहते हैं, दूध और पानी। यहां सुनता है कि जब तक राजा जनक द्वारा दिए हुए पुण्य उन नरक भोग रहे प्राणियों के साथ रहेंगे, तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। जब वो पूंजी समाप्त हो जाएगी पुण्यों की, वो पाप उनके ज्योके तो रखे, उनके कारण फिर नरक माना होगा। और उधर से राजा जनक आधा खाली कर दिया, नष्ट कर दी उसने अपनी कमाई, फिर वो क्या बने? वो नानक जी के रूप में वही आत्मा अवतरित हुई। राजा जनक के समय उनके सामने नौकर खड़े रहा करते थे, फिर स्वयं नानक जी वही राजा जनक वाली आत्मा श्री नानक जी बनकर सुल्तानपुर में एक नवाब के यहां स्वयं नौकर लगे। तो पुण्यात्माओं, इस निर्णायक ज्ञान से और इस रोशनी में, इस टॉर्च को साथ रख के चलना है परमात्मा के तत्व ज्ञान को, तब आप ठोकर नहीं खाओगे, मार्ग पर चलते रहोगे। तो यहां क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि चौबीसा, अंश बिछोड़े विश्वे बीसा। उन सिद्धियों की प्रकार बताई है, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वा सिर जागे, एक सिद्धि सेवक हो अग, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि पर लोके वासा, एक सिद्धि कष्ट तंचा जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि नितत विचार है, एक सिद्धि पांचो तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा पर गट बेले, चौबीसा को ना दिल चावे, सो हंसा सतलोक सिद्धावे। चौबीसा को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहूं निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास करीब गरीब दीवाना। अब इसमें क्या बताया है कि एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सबनाद मिलावे, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे। तपो तपो कर वक सुनाया, लोकन चोवल मेरी माया। अब कहा निर्णय दिया है कि ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, वो आकाशवाणी हुई कि तप कर तप कर। 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा कि अब तू लोक रचना कर, यानी सृष्टि कर। तपो तपो कर वक सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन। 1000 वर्ष के तप करके ब्रह्मा ने क्या प्राप्त किया? जीवों की उत्पत्ति करने वाला एक सिद्धि प्राप्त की वचन से। और फिर आपने आप देख पढ़ कर देखना विष्णु पुराण, ईब समझ में आवेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं एक दिन बैठा था और मेरे नाक के ऊपर से एक छोटा सा चमकीला सा बरहा, छोटा सा मक्खी से थोड़ा सा बड़ा, मेरे श्वास के अंदर से मैंने छींक आई, उसमें से निकला और वो देखते देखते बहुत बड़ा हो गया, बरहा माने सुअर। और फिर उसने जाकर के उस शंखासुर को मारा जो वेद चुरा ले गया था, वो वेद लिया काट के। तो अब ऐसे ही कहता, मैंने एक बार मेरे वचन से निकला, उसे राक्षस उत्पन्न हो गए, वह मुझे मारने के लिए बाजियों में भाग लिया। फिर उनमें से कुछ एक ने कहा भाई मत खाओ, एक का खाओ, इस तरह। तो वो ब्रह्म मट्टी ब्रह्मा की होगी, वह सिद्धि प्राप्त करके। तो कहने का भाव है, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, लोक रचन एक सिद्धि है जो ब्रह्मा को दीन। वो लोक रचन की सिद्धि एक ब्रह्मांड चलाने की है, वो काल ने स्वयं तप करके प्राप्त की हुई है। आगे बताया कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव में एक कबीर पंथी नाम कहलाते हैं वह, और गीसा पंथी। वो पुराने समय की बात है, सैकड़ों वर्ष पहले एक संत वहां एक गांव में आकर बैठ गया, जंगल बनी में। तो वो दिन रात जागता रहता था, सोता नहीं था। तो वहां के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने देखा कि महात्मा 4 दिन हो गए भाई, मैंने देखा ये सोता नहीं कभी भी। और भी लोगों ने छुप छाप कर देखा, उसके पास बैठे रहे, दिन रात ड्यूटी लगा दी, तुम भी रहना इतने समय तक तुम रहना। तो उन्होंने 10-15-20 दिन देखा वो कति नहीं सोया था, जागता रहता था। इसी के कारण वो एक संत पा के गया, उसको आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। बताया कोई बात हुई, वो जाग गए नहीं जाग गए, चाहे सुबह से भक्ति नहीं करी, तो बात हुआ वही की वही है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि एक सिद्ध ये 24 को ना मिल दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। कहता है वो अपने शब्द को, अपनी कमाई को बचाए हुए है और वही सतलोक जाएगा और दूसरा नहीं जा सकता। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार आप सत्संग सुनते रहिए, इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाइए और अपना कल्याण करवा लो। परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जात रोगे इस पहरे नो। ये समय हाथ से छूट गया, फिर नहीं मिलेगा। सुअवसर दिया है मानव शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और ये दास आपके सामने बैठा दिया वो जड़ी देने के लिए, जो सरजीवन बूटी है, जो जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए काट देगी, उसको प्राप्त करके अपना कल्याण करवाओ। सत साहिब।